At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny My Perks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with My Perks. Find your My Perksonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
Hey there, you're listening to The Quint.
निर्भया के गुनहगारों को इस साल 20 मार्च को फांसी तो दे दी गई, लेकिन रेप जैसे खौफनाक अपराध के खिलाफ हमारी जंग अब भी जारी है। फांसी की सजा के बाद लगा कि अब ऐसा काम करने वालों के मन में डर पैदा होगा और बलात्कार जैसी हैवानियत के मामले कम होंगे, लेकिन इसके बाद भी लगातार देश के हर हिस्से से ऐसी कई दरिंदगी की खबरें सामने आई। इनसे कहीं ना कहीं ये तो साबित हो ही गया है कि कड़ी सजा उसका इलाज नहीं है, बल्कि जरूरत समाज को और उसकी सोच को बदलने की है। महिलाओं के खिलाफ अपराध की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार शक्ति कानून लाने की तैयारी में है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की हरी झंडी भी मिल चुकी है। इसमें महिलाओं के प्रति अपराध के लिए सजाए मौत जैसी कड़ी सजा का प्रावधान भी है, लेकिन महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाली कई संस्थाओं ने इसका विरोध किया है और कहा है कि शक्ति विधेयक महिलाओं के बारे में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है और इसे वर्तमान रूप में पारित नहीं किया जाना चाहिए। इन एक्टिविस्ट्स ने यह भी कहा है कि नीतियों और कानूनों में सजा पर फोकस ना करते हुए अगर हम मानसिकता पर फोकस करेंगे तो वो बेहतर होगा। तो आज शक्ति बिल के लीगल पहलू को समझेंगे और साथ ही भारत में रेप जैसी गंभीर समस्या पर क्या सवाल पूछे जाने चाहिए उस पर भी बात करेंगे। क्विंट हिंदी पर आप सुन रहे हैं बिग स्टोरी हिंदी, मैं हूं फबीहा सैयद। पॉडकास्ट में आगे सुनिए एडवोकेट वीना गोडा को, जो कि एक वुमेन्स राइट्स लॉयर हैं।
नाउ द स्टेटेड इंटेंशन ऑफ द बिल इज फॉर द सेफ्टी।
ये जो समझा रही हैं वो आपके लिए आगे हिंदी में मैं ट्रांसलेट करके सुनाऊंगी, लेकिन इनके अलावा सुनिए भारती शर्मा जी को भी, जो शक्ति शालिनी की सेक्रेटरी हैं। शक्ति शालिनी एक ऐसा एनजीओ है जो सेक्सुअल और जेंडर वायलेंस के सर्वाइवर्स के साथ काम करता है।
जो कानून है वो एक टूल है, एक हथियार है। हथियार का इस्तेमाल करना होता है, मगर हथियार से ही सब कुछ नहीं होता है।
लेकिन पहले शक्ति बिल क्या है वो जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के दिशा कानून के तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार शक्ति कानून लाने की तैयारी में है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने इस कानून के ड्राफ्ट को पास कर दिया है। विधानसभा के आने वाले शीतकालीन सत्र में इसे पेश किया जाएगा। महिला और नाबालिग बच्चों पर अत्याचार के बेहद गंभीर और घृणित मामलों में इस कानून के तहत सजाए मौत या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए बढ़ते उत्पीड़न मामलों पर भी और सख्ती बरती जाएगी। इस कानून में कहा गया है कि 21 दिन के अंदर कार्रवाई का प्रावधान करके ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक पर लाया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ कानून में संशोधन कर देने से महिलाएं और बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे। महाराष्ट्र असेंबली में शक्ति बिल टेबल किया गया और कई महिला संस्थाएं से एंटी वुमेन कह रही हैं, इसका विरोध कर रही हैं। कई एक्टिविस्ट, जैसे अभी आपको बताया, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को एक ओपन लेटर भी भेजा है जिसमें इसे इसकी मौजूदा फॉर्म में पारित करने से रोकने को कहा है। उनका कहना है कि ये बिल महिलाओं के सशक्तिकरण के बजाय ऐसी मान्यताओं पर आधारित है जो कि काफी पुरुष प्रधान है, लेकिन जो कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसी कड़ी सजा लेकर आ रहा है वही उनके खिलाफ कैसे हो सकता है। इसका लीगल एंगल क्या है ये समझते हैं एडवोकेट वीना गोड़ा से, जो कि एक वुमेन्स राइट्स लॉयर हैं।
नाउ द स्टेटेड इंटेंशन ऑफ द बिल इज फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन।
वीना कह रही हैं कि बिल कहता तो है कि इसे महिलाओं की सेफ्टी के लिए लाया है, लेकिन ये दूसरे मौजूदा लॉज में भी बदलाव लाना चाहता है, जैसे कि आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पॉक्सो एक्ट। वीना जी कह रही हैं कि हमारा जो मेन कंसर्न है वो है इसमें इम्प्लाइड कंसेंट की बात। ये समझने के लिए पहले रेप की परिभाषा समझना जरूरी है, और वो है औरत की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती किया जाने वाला संभोग। तो रेप साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना होगा कि पेनिट्रेशन हुआ है, वो भी औरत के कंसेंट यानी मर्जी के खिलाफ, जिसकी बिना पर कोर्ट तय करता है कि वो एक कंसेंशुअल एक्ट था या नहीं। निर्भया जजमेंट और वर्मा कमेटी रिपोर्ट के बाद 2013 के जो अमेंडमेंट्स हैं उनमें उन्होंने कंसेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया है। कंसेंट का अर्थ है महिला द्वारा उसके शब्द या हाव भाव से सहमति का होना। अब महाराष्ट्र सरकार इसमें इम्प्लाइड कंसेंट की बात जोड़ना चाहती है। वो कहते हैं कि अगर दो अडल्ट्स के बीच रेप का आरोप लगा है और अगर कंसेंट इम्प्लाइड होगा तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि इस मामले में कंसेंट था। इसका मतलब है कि इससे कुछ केसेस में कंसेंट होने का अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर वीना समझाती है कि मान लीजिए कि एक लड़की टिंडर डेट पे जाती है, वो उस लड़के से एक दो बार मिलती है, थोड़ा बहुत इंटीमेट भी हो जाते हैं दोनों, लेकिन अगर वो आदमी उस लड़की पर खुद को फोर्स करता है या जबरदस्ती करता है, और फिर अगर वो लड़की ये कहे कि मेरा रेप हुआ है, क्योंकि ऑफ कोर्स कंसेंट सिर्फ किसिंग के लिए दिया गया था लेकिन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्ट के लिए नहीं, तो इसमें संभावना है कि कोर्ट कहेगा कि वो दोनों एक दूसरे की मर्जी के साथ डेट पर गए थे, इंटीमेट भी हुए थे, यानी इसमें कंसेंट इम्प्लाइड है, मतलब कि कंसेंट होने का स्थिति में अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस तरह उस लड़की पर प्रेशर ज्यादा है कि कैसे साबित करेगी कि कंसेंट नहीं था और उसका एक्चुअली में रेप हुआ है। अडल्ट वुमेन के केस में वीना कह रही है कि ज्यादातर रेप के केसेस में अपराधी कोई जान पहचान वाला ही होता है, तो इस कानून में बदलाव से रेप की परिभाषा ही बदल जाएगी और सिर्फ उन्हीं केसेस में ये कानून ठीक से काम कर पाएगा जिनमें अपराधी कोई अजनबी होगा।
Entire definition of rape and other than stranger rape, you can't bring in anything else.
अगर आंकड़ों पर भी आप नजर डालेंगे तो NCRB की पिछले साल की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में औसतन हर रोज रेप के 87 मामले दर्ज किए जाते हैं। 95% केसेस में अपराधी कोई जानने वाला ही होता है। ऐसे में शक्ति बिल के अंदर जो इम्प्लाइड कंसेंट वाली बात अभी एडवोकेट वीना समझा रही थी, इसने हमें फिर एक बार ये पूछने पर मजबूर कर दिया है कि भारत में बचाव की जगह सजा पर क्यों फोकस किया जा रहा है। इस पर अब बात करते हैं भारती शर्मा जी से, जो शक्ति शालिनी NGO की ऑनररी सेक्रेटरी हैं।
जो कानून है वो एक टूल है, एक हथियार है
जी।
हथियार का इस्तेमाल करना होता है मगर हथियार से ही सब कुछ नहीं होता है। ये जो भी हो रहा है, जैसे दिसंबर 16 तारीख पे जो हुआ कांड हुआ निर्भया के साथ, उसके बाद बहुत सारे कानूनों में अलग अलग जगहों पे काफी सख्ताई आ गई, मगर इसका रिजल्ट क्या ऐसा आया है कि वो सब रुक गया? नहीं रुका है। अगर देखने जाएंगे तो ये दिखाई देता है कि रेप और ये सब कुछ बहुत जगहों पे शायद बड़ा भी दिख रहा है और इतने छोटे बच्चों के साथ भी होता है, लड़का या लड़की इतने छोटे बच्चों के साथ हो रहा है, इसका मतलब है कि कानून का तो इम्पैक्ट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि कानून एक टूल है, एक हथियार है। बात क्या करने की जरूरत है, हमारा जो सोशियो कल्चरल स्ट्रक्चर है वहां पे बदलाव लाने की आवश्यकता है। जहां तक जब ये सोशियो कल्चरल जो हमारा पैट्रियार्कल सेटअप है उसके माइंडसेट में बदलाव नहीं आएगा, तब तक काली कानून से बदलाव नहीं आएगा। दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये विषय के ऊपर जो हमें समझना बहुत आवश्यक है कि हमें सोचना चाहिए कि हिंसा से हिंसा नहीं कटती है, हिंसा से हिंसा बढ़ती है। यानी इसका मतलब है कि हमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके है के जिसको अंग्रेजी में रेट्रीब्यूशन कहते हैं, रेट्रीब्यूशन के अगेंस्ट रेस्टोरेशन एंड रिफॉर्मेशन की बात करने की आवश्यक है जो नहीं हो रही है। हमारे पूरे स्ट्रक्चर में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, सब जगह पे रेट्रीब्यूशन को हटा के वहां पे हम रेट्रीब्यूशन को हटा के रिफॉर्मेशन एंड रेस्टोरेशन की अगर बात करेंगे, वो तरीके अपनाएंगे, वो प्रोसेसेस अपनाएंगे, वो प्रक्रियाएं अपनाएंगे, तब जाके धीमे धीमे फर्क आएगा। अगर अगर कानून को सख्त बनाते जाएंगे तो उससे मेरी पूरी राय है कि उसके हिसाब से कुछ नहीं बनता है, क्योंकि बहुत साफ बातें है कि वायलेंस बिगेट्स वायलेंस। इट्स ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड कि ये वायलेंस कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, उसमें हम बदलाव लाने की कोशिश करेंगे एक समझ से, तो ही वो बदलाव आ सकता है। और इससे लॉन्ग रन प्रोसेस एकदम ठीक नहीं होगा। तो ये भी देखो, यहाँ पे हमारे जो कानूनों में बहुत ही ज्यादा पनिशमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हम कहते हैं कि फांसी दो, डेथ पेनल्टी। बताइए कहाँ डेथ पेनल्टी से फर्क आ रहा है? अगर आपने चार आदमी को मार दिया तो आपने क्या बदलाव लाए? आपने तो जिसमें बदलाव ला सकते थे इन लोगों को ही एलिमिनेट कर दिया। इनके साथ काम करके इसमें बदलाव लाओ, स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं, एक व्यक्ति में जो बदलाव आया वो 10 को पहुंचाएगा बदलाव। मगर वो व्यक्ति को वहां से आपने हटा दिया तो बदलाव कहां से आएगा, किसको पता चलेगा?
निर्भया रेप और हत्याकांड में गुनहगारों को सजा तो मिल गई है, लेकिन अब भी अपराध में कमी नहीं आ रही है। कानून भी मौत की सजा से कम बात नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद हाथरस में एक दलित महिला के साथ बेरहमी से रेप होता है, वो मर जाती है। इस पर पॉलिटिक्स भी की जाती है, यानी रेप को रोकने के लिए कानून में सख्ती लाना शायद काफी ना हो। ये रिफॉर्म जैसे कि अभी भारती जी समझा रही थी कि एक सामाजिक स्तर पर होना जरूरी है और जो एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन यहां मैं भारती जी से एक और सवाल पूछूंगी कि समाज को रातों रात नहीं बदला जा सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन कोई भी बदलाव लाने के लिए कई सारे रिफॉर्म्स जोड़कर आपस में चलना पड़ता है, जिसमें एजुकेशन, मेंटल हेल्थ, धर्म जाति के आधार पर भेदभाव के मुद्दे, घरों का माहौल, कल्चरल माहौल, कई पॉलिसीज में बदलाव लाने होंगे। लेकिन ये इतनी सारी चीजें हैं और इस मल्टी डायमेंशनल बदलाव के लिए किस एक सबसे बड़े सपोर्ट की जरूरत है, वो क्या चीज है?
वही पे पॉलिटिकल विल चाहिए। देखिए शॉर्टकट तो हो ही नहीं सकता है ना
जी।
आपने तो देख ही लिया ना कि वायलेंस से वायलेंस नहीं जाती है। आपने ये भी ला दिया ना डेथ पेनल्टी, कोई बदलाव तो नहीं देखा ना। आप जो कह रही है वो बिल्कुल सही बात है, मगर हम हमारे सोशियो कल्चरल स्ट्रक्चर में बदलाव लाए, हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो नजर से बदलाव लाए, वो हमारे अपब्रिंगिंग में बदलाव लाए, तभी तो ये होता है ना। हमारे अपब्रिंगिंग में क्या है? ऐसा है ना, डिसिप्लिन। व्हाट इज डिसिप्लिन? चार थप्पड़ मारने से सुधर नहीं जाता है ना व्यक्ति। तो मेरा ये कहना है कि ये सारा जो हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस है जिसमें पावर की बात पर पावर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वायलेंस इस्तेमाल किया जाता है, शब्द का वायलेंस होता है, खाली फिजिकल वायलेंस नहीं होता है, शब्द से वायलेंस होता है, तो मानसिक तौर पे वायलेंस होता है, ये अगर हम समझने लगे और इसमें हम हमारे बर्ताव में परिवर्तन लाए, हमारा माइंडसेट एंड देन डेफिनेटली इट विल इफेक्ट अवर बिहेवियर, हमारे बर्ताव में फर्क आएगा, तब जाके होगा ना। मार डालने से कहाँ बदलाव आता है? हमने कभी कोशिश की? ये जो रेस्टोरेशन की बात है, रेस्टोरेटिव जस्टिस की बात है, हम ये प्रक्रिया अगर इस्तेमाल करें थोड़े थोड़े तभी तो ये बदलाव आ सकता है।
तो हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स को सुनकर इतना तो समझ आ जाता है कि रेप जैसा मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसे दशकों से समझने की कोशिश की जा रही है। रेप सिर्फ एक एक्ट नहीं है, बल्कि ये एक बड़े इशू की तरफ इशारा करता है, बल्कि इश्यूज की तरफ इशारा करता है। वो इश्यूज गरीबी, पढ़ाई, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी कि मेंटल हेल्थ, तो एक एक करके इन सारी चीजों को किस तरह से समझा जा सकता है वो जरूरी है। और जब ये सारी चीजें एक साथ मिलकर आएंगी उसके बाद ही कोई कानून ढंग से काम कर पाएगा। इस पॉडकास्ट के एडिटर हैं संतोष कुमार और इसे प्रोड्यूस किया है फबीहा सैयद ने। अगर आपको बिग स्टोरी हिंदी सुनना पसंद है तो क्विंट हिंदी की वेबसाइट पर लॉग ऑन कीजिए और हमारे पॉडकास्ट सेक्शन का मजा लीजिए।